$70।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations Chandni Banquet Hall
30 years of hospitality experience corporate event exhibition expo or any celebration
indoor and outdoor golf course facilities Chandni Banquet Hall for appointment call today at 905-458-8888 905-458-8888 or visit chandnivictoria.ca Chandni
दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस का बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कड़ पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 416-744-7534। कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
Amex Travels 5-star Hajj packages. आप हज पे जाना चाहते हैं? Confusing Hajj app के हाथों परेशान मत हों। नियत आपकी, बुलावा रब का, इंतजाम और एहतमाम Amex Travel का। Air tickets मदीना, मक्का, मिना टेंट्स, अरफात कैंप, हरम के सामने होटल की सहूलत से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, हर चीज सिर्फ Amex Travels के साथ। Limited seats, call Amex Travel.
Elite Hajj 2025 packages exclusive. Special deals for US, Canadian, Pakistani passport holders. Limited seats.
Book now. Call 416-599-5200. 416-599-5200.
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें 770 एम डायल पर सुन रहे हैं। प्रोग्राम साजो आवाज 770 एम डायल पर तो शायद आप इस वक्त नहीं सुन रहे होंगे, नंबर पे आप सुन रहे होंगे 6478724900 और हमारी वेबसाइट eawaz.com पर हमारा आईपीटीवी ई आवाज के नाम से तमाम ही आईपीटीवी बॉक्सेस पर आपको मिल जाता है उर्दू या पाकिस्तानी कैटेगरीज में। हफ्ते का एक नया दिन, खुशगवार दिन, कुछ मौसम ठंड की तरफ जा रहा है और खबरें गर्म होती जा रही हैं। मौसम ठंडा हो रहा है लेकिन खबरें जो है ना, खबरें देखो मेरा भी खैर खराब हो गया, खुदा की सब मुझे नहीं मारिएगा, मेरी खबरें ही हैं, खबरें नहीं है, खबरें खे वाला। बहरहाल हमारे साथ जो है वो मोहतरम शख्सियत, पाकिस्तान से इम्पोर्टेड, नहीं नॉट पाकिस्तान, मतलब दुबई से इम्पोर्टेड जो है वो हमारे स्टूडियो में आ पहुंची है। हमेशा आती है, आज भी आ गई क्योंकि मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा, वो तो आ ही जाती है। मैं बोल देता हूँ कि मेरा मजाक, देखो बुराई बताती नहीं है, वो आ जाती है। मैं तो आ गई, या परेशानी आ जाती है, ये भी आ जाती है।
बुरा वक्त बता के नहीं आता।
ये कीड़ा वहां देखा, बोल दिया। मैं चाह रहा था कि कुछ निकले, साउंड इफेक्ट आए। चले जनाब, खुश आमदीद देते, प्रॉपर इंट्रोडक्शन। शाजिया मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
डब्ल्यूएस, तुम कैसे हो भाई?
बिल्कुल बुरा वक्त।
तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया।
बुरा वक्त में वर्ड नहीं आ रहा था।
मैंने मजद भाई को भी बड़ी दफा बताया, बुरा वक्त कभी बता के
नहीं आता।
हाँ, तो ये तुम नादान हो सारे।
बिल्कुल फिट है आपके ऊपर।
हाँ बिल्कुल फिट है। क्यों, जन्नत के दरवाजे नहीं खोलने तुमने अपने ऊपर?
मैं कोई कम, नो कम्प्लेंट।
नो कम्प्लेंट,
नो
कम्प्लेंट।
अल्हम्दुलिल्लाह,
तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें जन्नत में जाना है।
भाई ये छोटी सी जिंदगी में अगर सजाएं पूरी हो जाए ना, मैं क्या सफलता पा लूंगा, क्या
सफल हो जाऊंगा।
बड़ा मुश्किल वर्ड है, सफल हो जाएगी मेरी।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जब तक तुम्हारे, तुम चाहते हो मेरे लिए दरवाजे खुले रहे, मेरे साथ काम
होगा। रेयान वाला, अल रेयान। अल रेयान,
बिल्कुल। यस यस यस, ठीक है।
इंशाल्लाह दुआ यही है।
हाँ जी, हाँ जी।
लेकिन भारत, वेलकम अगेन।
अच्छा,
और आज एक और खूबसूरत दिन। हाँ। तो क्या हालात हैं आज? हम सारा दिन लोग बातें भी होती रही,
खराब हालात हैं। बस वो एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने के चक्कर में ना, जो पारा चनार में हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि वो जिस वक्त मैं जो सीन्स देख रही थी ना, मुझे लग रहा था वो मूवी गॉडफादर चल रही है। गॉडफादर की मूवी देखी है तुमने? वो जो खासतौर पर जो बैप्टिज्म का जो सीन है, वो जो सीन है उसमें आप देखेंगे ना, जिस तरह सड़कों पर मरे हुए लोग पड़े हुए हैं, वो कत्लेआम है। तो वो मुझे लग रहा था, जिस तरह वो सर काटे हुए हैं और वो जिस तरह, हाँ हाँ, तो वो मुझे लग रहा था ये बिल्कुल वो जो है ये, हाँ हाँ, गॉडफादर का ये सीन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो है ये सोए हुए हैं, ये बस इनका एक ही एजेंडा है कि जी इमरान खान की जो है हमने जान निकाल दी है, इसको हमने नहीं आने देना, पीटीआई को दीवार के साथ लगाना है। बाकी सारा मुल्क जल रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, कुर्रम में क्या हो रहा है, वही पारा चनार का जो एरिया वहां, वो उसके साथ कोई लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कराची जो है कचरे का ढेर, वो इतना खूबसूरत शहर बनता जा रहा है, किसी तरफ ध्यान नहीं है, बस ध्यान एक ही तरफ।
मेरा एक सवाल भी है यहाँ,
इमरान खान को बस दीवार के साथ लगाएं, दीवार
वजीर दाखिला होता है हमारा, जो पूरा फेडरल वाला होता है,
उसको तो दाखिल कर देना चाहिए जेल में।
जिम्मेदारी क्या सिर्फ फेडरल की होती है या वो पूरे पाकिस्तान का वजीर दाखिला होता
है? वैसे तो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो पूरे पाकिस्तान का होता है,
मिनिस्टर
जो है पूरे मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर है।
फेडरल इंटर मिनिस्टर जो होता है, हाँ, वो अपने, हाँ, अपने प्रोविंस के होते, हाँ, हैं जरूर, हाँ, हाँ, लेकिन जो फेडरल होता है
नहीं,
वो तो फेडरल होता है ना,
पूरे पूरे मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर है ना। ये फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर का मतलब है पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान का।
ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे होते हैं कि बयान वजीर आला साहब अपना सूबा संभालें, आप यहाँ चल के आ रहे हैं, तो एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी जो पारा चनार में हो रहा है या किसी भी सूबे में हो रहा है,
उनको पता ही नहीं, मुझे नहीं लगता होगा, उसको पता भी होगा कि वहां पे हो क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। बस उनको एक ही चीज पता है कि इमरान खान को हमने किसी तरह खत्म करना है, यानी कि पूरे मुल्क को आपने एक पर्सनालिटी के साथ अटैच कर दिया है कि सारा मुल्क, यानी कि आपकी स्टेटमेंट इस वक्त क्या कह रही है गवर्नमेंट की भी और इंटीरियर मिनिस्टर की, कि द पाकिस्तान कैन गो टू हेल, वी आर ओनली कंसर्न विद इमरान खान, बस वो और उसकी पार्टी।
ने अच्छी बात की, बहुत अच्छी लगी बात, वो शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा यार इमरान खान इस वक्त ये हालत कर दी है उसने कि इस वक्त वो जेल में आजाद है,
हाँ,
और ये सारे कंटेनर लगा के कैद,
हाँ,
में
कैद में, हाँ। और तुमने देखा वो जो फोटो शूट्स लोग कर रहे हैं, वो जिनकी शादी, हाँ, हो रही है, हाँ, हाँ, कंटेनर
फन है,
वो कह रहे हैं
कि उन्होंने कहा कि यार
शादी कर रहे हैं तो चलो कंटेनर के पास हम खड़े होकर फोटो शूट करेंगे।
उनको लगा ये कोई मॉन्यूमेंट है कोई,
हाँ बिल्कुल,
तो वही तो है। कंटेनर आपको, हाँ, कोर्ट पे ही नजर आते हैं,
हाँ हाँ। तो आई एम सॉरी टू से बट शेम ऑन दिस गवर्नमेंट एंड ऑल्सो आसिम मुनीर साहब, बड़ा ही अफसोस है आपसे। हमने जिंदगी में आप जैसा वैसे जो है ना कोई हमने आर्मी चीफ नहीं देखा। आपकी इज्जत होती, आप अपनी बैरक्स में बैठते अपनी मिलिट्री को लेके, आपकी इज्जत लोग करते, आपकी मिलिट्री की भी इज्जत करते। इस वक्त जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, आप डरे उस वक्त से, आप डरे उस वक्त से आसिम साहब, हमारे जो सिपा सालार जो बड़े बाहुबली बने हुए हैं आप भी, और जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी जो लोग हैं वो बड़े बाहुबली जो बने हुए हैं ना, आप जैसे ही बाहुबलियों का क्या हशर हुआ था फ्रांस के अंदर, जिस वक्त रॉयल्टी के गले काटे थे, गिलोटीन आपने शायद सुना होगा कि गिलोटीन उनको किया था, क्या हुआ है आप जैसे रॉयल्स जो हैं उनका श्रीलंका के अंदर हाल, इन्हीं आप जैसे ही रॉयल्स का हाल बांग्लादेश में क्या हुआ है, शर्म कर लें थोड़ा, हिस्ट्री से नहीं आप सीख रहे, अभी रिसेंट जो इवेंट्स हैं उनसे आप सीख लें, वरना आप लोगों के साथ भी वही होगा कि सड़कों पे आप घसीटे जाओगे। आपने तो शहबाज शरीफ साहब आपने तो ये कहा था ना उसको जरदारी को कि मैं तुम्हें लाहौर की सड़कों पे खींचूंगा, आप लोगों को पाकिस्तानी सारी पाकिस्तान की हर सड़क पे खींचेंगे। आप समझ जाओ जरा, थोड़ा सोच लो, जरा देख लो किस रीजन में बैठे हुए हो, सारे दुश्मन ऑलरेडी आपके ऊपर नजरें बना के बैठे हुए हैं, ऑलरेडी अखंड भारत की बातें हो रही हैं, समझ जाएं अभी भी ऑलरेडी मुल्क का आधा हिस्सा बिगाड़ सके हैं। एक आदमी के लिए मुल्क सारे के अंदर आप मत पैदा करें। जर्मनी के साथ कितनी लड़ाई थी सारे यूरोप की, कितनी आमिर लड़ाई थी, वर्ल्ड वॉर लड़ी थी जर्मनी के साथ, वर्ल्ड वॉर उसके मुल्क के दो हिस्से, कितनी लड़ाई इस वक्त जर्मनी के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। ठीक है, जर्मन अलग है, फ्रेंच अलग है, गोरे अलग है, अमेरिकन अलग है, बेल्जियन अलग है, हर बंदा यूरोप के अंदर अलग है, लेकिन फिर भी वो मिलकर आप अपने लोगों को इमरान खान की वजह से आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपने इंटरनेट रोके हुए हैं, लोगों के बिजनेसेस आप बर्बाद कर रहे हैं, पूरे मुल्क को आपने गॉडफादर का एक जो है ना वो लड़ाई का सीन बना के रख दिया है। शेम ऑन ऑल ऑफ यू। उस आदमी के साथ बैठो, उसके साथ आप निगोशिएशंस करो और ये मुल्क के अंदर केओस खत्म करो। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो इतनी शर्म आपके अंदर होनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट छोड़ो, बोलो जी टाटा बाय बाय, जिनसे गवर्नमेंट चलती है वो चला लें और उस मुल्क को संभाल लें, जैसे कि श्रीलंका के अंदर हुआ है। वरना आप लोगों का जो अंजाम है आज की तारीख नवंबर 25, 2024, नोट करके लिख लें मेरी बात, आप लोगों का हाल वही होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त रॉयल्टी सारी के साथ उन्होंने किया था। अगर आपने अभी के हालात नहीं सीखने, आप तारीख सीख लें, रोमन्स के साथ क्या हुआ था, ग्रीक्स के साथ क्या हुआ था, इवन आपकी ऑटोमैन एम्पायर उसके साथ क्या हुआ, मुगल एम्पायर के साथ क्या हुआ, आपका जो आखिरी राजा था उसको रंगून में भेज दिया और उसको क्या क्या कुछ सहना पड़ा उसके बच्चों के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो रॉयल्टी है इस मुल्क की आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। तो इसलिए समझ जाओ, उस आदमी के साथ बैठ के बात करो, इस मुल्क के अंदर केओस को खत्म करो, इस इतने खूबसूरत मुल्क को बर्बाद करके आपने रख दिया है। 70s का जरा ईरा याद करो, हम साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा, जो 1960 से 1967 का जो टाइम था, पाकिस्तान सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा था, कितनी डेवलपमेंट आ रही थी, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया सारा कुछ उसका, समझ जाएं, अभी भी समझ जाएं। बहरहाल एनीवेज, अगर नहीं समझेंगे, वही अलामा इकबाल वाली बात, ना समझोगे तो मिट जाओगे, जैसे उन्होंने इंडिया के लिए मैं बोला था ना, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में, तो समझ जाएं। ओके जी, चलो हम अब अपने जी जाते हैं खरबों की तरफ जरा। ठीक है जी, ओके जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय लीजर्स कॉस्मेटिक्स, और लीजर्स कॉस्मेटिक्स की जनाब बड़ी जबरदस्त सेल चल रही है, बच्चे भी जो है, मेरा बेटा जो है वो उस तरह के नौजवान भी बड़े जो है हो गए हैं, क्या कहते हैं, इंस्पायर से, तो वो मुझे कह रहा है कि मामा ये इसके ऊपर हमने जाना चाहिए। वाकई आप जाएं, अगर आप शौकीन हैं अच्छे हाई एंड ब्रांड्स की चीजों के, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में है और ये सेल जो है अभी चल रही है, तो आप उसका फायदा उठा लें, सारे जो है वो साल के लिए भी आप अपने गिफ्ट्स भी जमा करके जो है वो रख सकते हैं। और जनाब राजा बादशाह जी, क्योंकि उनका प्यार जो है सिर्फ आमिर के साथ है, तो आपने जब भी राजा बादशाह के पास जाना है आमिर का नाम लेना है। ठीक है, आपने कहना जी आमिर के रेफरेंस से मैं आया हूं, तो शायद आपके भी 1775 बच जाएंगे। होम एंड ऑटो इंश्योरेंस देते हैं और ऑल स्टेट के साथ हैं, आप कॉल कर लें राजा बादशाह को, इनका नंबर है 6472903773। और जनाब जो है ये मुल्तानी सोन हलवा है जी, ऑथेंटिक एंड फ्रेंचली मेड इन कनाडा, वो कहते हैं जी कि आप इसका ऑनलाइन भी ऑर्डर डाल सकते हैं, मुल्तानी हलवा delights.com पे भी जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं, तो इस पे नंबर है 4162704439, आप कॉल कर लें इनको। एंड एमएक्स ट्रेवल वाले कह रहे हैं जी कि हम बहुत जबरदस्त आपको हज के पैकेजेस दे रहे हैं, अगर आप क्वाड में हैं, ट्रिपल हैं, डबल हैं, जो भी है, तो आप जो है इनसे संपर्क करें। ठीक है, और इनका नंबर है 4165995200। ठीक है जनाब, ओके जनाब, सबसे पहले तो हम आपको खबर सुनाते हैं इधर अपने जो है जो जनती ट्रूडो, जो कि अब ज्यादा जनती नहीं थे, लेकिन ट्रूडो साहब जो हैं, ये नेटो पार्लियामेंट्री असेंबली जो चल रही थी मॉन्ट्रियल के अंदर, उसके अंदर जो है वो बातचीत जो चल रही थी, तो उसमें ये बात कर रहे थे और इन्होंने कहा जी के जो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वायलेंस हुई है नहीं मॉन्ट्रियल में, जीशान जो मॉन्ट्रियल में वायलेंस हुई है उसका दिखाएंगे हम पहले। हाँ ये जो वायलेंस है ये देखें आप जी, ये देखें ये कनेडा है हमारा, ये कनेडा के अंदर क्या चल रहा है। मॉन्ट्रियल में बेताचा वीकेंड के ऊपर वायलेंस हुई है। इसमें वैसे तो कुछ लोगों ने कहा कि जी प्रो पैलेस्टीनियन ये प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने कि यहाँ पे गाड़ियों को आगे लगाई और सब कुछ किया और जो है यहाँ पे जगह जगह के ऊपर यहाँ पे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस डाले, मेटल आइटम्स डाले और टारगेट किया पुलिस ऑफिसर्स को। इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ जख्मी हुए और इन्होंने फिर वो कहते हैं जी कि ये जो शॉप्स के विंडोज हैं ये यहाँ पे सेंट उर्गबैन में और रेने लेवक्वा बुलेवार्ड जो है उसके अंदर भी तोड़फोड़ इन लोगों ने की और ये जो सारा कुछ चलता रहा। इसके ऊपर जो फिर ट्रूडो साहब जो ये असेंबली पे बात कर रहे थे नेटो पार्लियामेंट्री असेंबली, उसमें इन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी ये हुआ है उनको सजा देनी चाहिए, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और कुछ लोगों ने कहा जी कि ये नेटो के अगेंस्ट प्रोटेस्ट थे, दूसरों ने कहा कि नहीं ये तो एंटी इसराइल थे ये सारे जो थे ये प्रो पैलेस्टीनियन लोग थे। बहरहाल अभी तक पता नहीं चला है, बहरहाल बेतहाशा यहां पर वायलेंस हुई और ट्रूडो साहब ने कहा जी कि ये जो है अच्छा। अब इसमें हुआ क्या है, अब जब ये वायलेंस चल रही थी तो बेचारे मासूम ट्रूडो साहब जो हैं वो टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट जो है फिफ्थ वाला ऑफ सिक्स इन रॉजर्स सेंटर अटेंड कर रहे थे और वहां पे डांस कर रहे थे। अब लोगों ने कहा जी कि मॉन्ट्रियल में इतना मारामारी चल रहा है और ट्रूडो साहब जो है नाच रहे हैं, मतलब है ट्रूडो साहब नूं पता सी कि जी मैं उत्थे नचण जावांगा ते इत्थे जिहड़े स्यापे पै जाणगे, पर जी लोग भी छोड़ते नहीं है। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा जी कि ट्रूडो साहब जो है वो क्या उधर नाच रहे हैं और इधर देखो क्या हुआ हुआ है। बहरहाल काफी उसके ऊपर जिस वक्त ट्रूडो साहब ने आके बाहर कॉन्सर्ट से देखा और उन्होंने सख्त ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये हम बिल्कुल लोगों का हक होता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन जो इस तरह का करेंगे उनको पनिश किया जाएगा अंडर फुल extent of the law। अच्छा जी इसके साथ साथ अब वही जो वहां पे नेटो पार्लियामेंट्री असेंबली हो रही है यहां पे, तो उसमें जो चेयर ऑफ यूएस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ओहायो रिपब्लिकन है माइक टर्नर साहब, उन्होंने कहा जी कि कनाडा को अपने नेटो के जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब को बड़ी दफा नेटो ने कहा है कि भाई 2% ऑफ जीडीपी जो है हमारा टारगेट है और उसमें कोई 10 साल पहले ये जो वेल्स में स्मिट हुआ था तो उसमें कहा गया था कि आप अपना मिलिट्री के ऊपर ये स्पेंड करें, लेकिन कनाडा जो है वो कहता रहा है कि हम अभी नहीं कर सकते नहीं कर सकते और बाय 2032 जो है हम करेंगे। उसके ऊपर ये जो है रिपब्लिकन जो है माइक टर्नर साहब ये कह रहे हैं कि ये बहुत पीछे छोड़ दिया इन्होंने अपना ये जो डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट है और इनको अब एक्सेलरेट करने की जरूरत है। तो ये आए हुए थे यहां पर मॉन्ट्रियल में नेटो पार्लियामेंट्री असेंबली अटेंड करने, तो ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि नहीं वी आर राइट ऑन पैथ और हम बहुत जल्दी बिल्कुल अपना 2% जो है आने वाले सालों में ये रीच करेंगे और बिल्कुल हमें पता है कि दुनिया चेंज हो रही है, कनाडा और उसके एलाइज जो है उनकी नीड्स भी बढ़ रही हैं तो हम ये अचीव कर लेंगे। विनिपेग पुलिस सर्विस ऑफिसर जो हैं उनको जी वो अब रिकवर कर रहे हैं क्योंकि ओवर द वीकेंड उनके भी गले के ऊपर थ्रोट पे जी किसी ने छुरी मार दी जिस वक्त वो जो थी वहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे वहां पे शॉपिंग सेंटर के पास और वो कहते हैं जी कि हम उस एरिया में रिटेल थेफ्ट इनिशिएटिव जो था हमने चलाया हुआ था और बहुत सारी जो पुलिस कम्युनिकेशन सेंटर के पास लोग प्लेन क्लोथ्स में थे जबकि हम एक जो वहां पे जब हम पहुंचे तो ऑफिसर्स तो उसमें से एक ऑफिसर के ऊपर इस मेल सस्पेक्ट ने जो है वो वार किया, फिर दूसरे जो लोग हैं वो उसको मना करते रहे कि भाई तुम ये जो शेल्टर के पास था ये कि भाई तुम ये अपना ड्रॉप कर दो अपनी नाइफ, जब उसने नहीं की तो फिर ऑफिसर्स ने उसको गोली मार दिया उसको, जिस वक्त तक हॉस्पिटल लेके गए तो वो मर चुका हुआ था। बहरहाल जो पुलिस ऑफिसर है वो सीनियर डब्ल्यूपीएस का मेंबर था और उसको अब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जो सस्पेक्ट मरा है उसकी अभी तक आइडेंटिटी पुलिस ने नहीं बताई है। इसी तरह एक आदमी की डेथ और 5 लोगों को हॉस्पिटल में लेकर गए थे इंक्लूडिंग अ वुमन इन क्रिटिकल इंजरीज जब एक कोलिजन हुआ जी ब्रैम्पटन के अंदर ऑन स्टील्स एवेन्यू ईस्ट एंड गोरवे रोड साउथ ऑफ हाईवे 407। पैरामेडिक्स जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने जो है मेल पेशेंट को वो लेकर गए हॉस्पिटल में एकदम से, लेकर उसको बताया गया कि भाई वो मर चुका है। दूसरा जो था उसको फिर ट्रॉमा सेंटर में लेके गए, बाकी 4 को जो है सीरियस इंजरीज के साथ एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गए। पुलिस का कहना है कि ये 2 व्हीकल्स जो है ये स्टील्स एवेन्यू पे जो जिनके ये कोलिजन हुए, एक उसमें से ऑडी थी ईस्ट बाउंड और एक टोयोटा सियाना थी वेस्ट बाउंड, और जो ट्योटा सियना का जो ड्राइवर था उसने एकदम से लेफ्ट टर्न लेके साउथ बाउंड जो फिंच एवेन्यू पे फिर ये जो है इसके साथ टक्कर मारी ऑडी के साथ, बहुत ही वायलेंट कोलिजन हुआ। अपील पुलिस जो है उसका मेजर क्राइम ब्यूरो जो है वो इसको अब इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो कह रहे हैं जी कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि ये लोग जो है स्ट्रीट रेसिंग करते हैं, लेकिन हम डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग स्ट्रीट रेसिंग कर रहे थे या वैसे ही बैड जजमेंट में इनका कोलिजन हुआ है और ये इतना ज्यादा जो है फेटल इंजरीज लोगों को आई हैं। कनाडा के अंदर जनाब जो है स्कर्वी वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता ही है कि 18वीं सेंचुरी जो सेलर्स होते थे, सेलर्स को ये होती थी और अब जो है ये बेतहाशा कनाडा में भी देखी गई है। कोई तकरीबन 27 केसेस जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया, मेरे ख्याल में ज्यादा ही होंगे, 27 तो ये ऐसे ही कह रहे हैं। उसकी वजह यह होती है कि बहुत ही सिवियर वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये सारे केसेस जो है सस्कैचुअन में देखे गए हैं और इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी से है इन रिमोट एंड जो है रूरल एरियाज के अंदर। वैसे तो आपको पता ही है कि विटामिन सी फूड के बहुत सारे सोर्सेज में जैसे कि लेमन में और जो ऑरेंजेस होते हैं उसके अंदर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग चूंकि उनके पास पैसे नहीं होते तो वो बहुत सारा फूड जो है वो प्रॉपर खा नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि उनकी बोन्स भी जो है वो बिल्कुल हाथ पैर उनके टेढ़े हुए होते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो वो कहते हैं जी कि लेकिन 1 to 3 months अगर आप इनटेक ले लें विटामिन सी का तो आप स्कर्वी जो है आपका इंप्रूव हो जाता है क्योंकि आपकी बोन्स जो है वो जरा वो होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। तो ये है जनाब सिसली के अंदर, वही जो भी मैं बात कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर गॉडफादर का सीन था, सिसली के अंदर भी वीकेंड के ऊपर गॉडफादर की जो आई थी फिल्म बड़ी मशहूर 1972 में, उसका सीन जो है वो पेश किया जा रहा था। उसकी वजह यह है कि एक कंस्ट्रक्शन एरिया था यहां पे एल्टो फोंटो में नियर पेलमेरो, यहां पे जी एक गाय जो कि प्रेग्नेंट थी उसका पेट काट के और उसका बच्चा उसके ऊपर डाला हुआ था और एक हॉर्स जो था उसका गला काट के वो भी वहां पे एरिया में फेंका गया था। अब सिसली जो है वहां पे जो है जितने भी जब उन्होंने देखा वो सारे एरिया में ब्लड ही ब्लड, तो वो जाहिर है लोग जो है बेतहाशा वहां पे उनके अंदर जो है वो एंग्जाइटी आ गई और बड़े वो परेशान हुए। उसकी वजह यह है कि यहां पे जो गैंग्स हैं जो माफिया वाले हैं वो फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि थोड़े दिन पहले कोई 20 के करीब माफिया मेंबर्स जिनकी के अब सजाएं पूरी हो गई थी उनको छोड़ा गया है, तो अब लग रहा है कि जैसे वो अब बदला लेना चाहते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन बिड्स थी ये इसमें जो एक आदमी था वो ये जो माफिया रिलेटेड फर्म्स थी उनको वो नहीं देना चाहता था। वैसे वो उसने पुलिस को बताया कि उसको तो कोई थ्रेट्स नहीं आए हैं, लेकिन शायद माफिया वाले पहले एक साइन देना चाहते हैं और फिर कोई आएगा। ये जो पूरा सीन ये करते हैं ये भी जो है इसीलिए कि लोगों के अंदर में डर बैठे और वो जो है उनको जानवरों को ऐसे काट काट के जो है वो ऐसे फेंकते हैं इलाकों के अंदर, गर्दनें काट के, जिसका कि ये मतलब होता है कि अगर तुम हमारे खिलाफ गए तो तुम्हारी भी ऐसे गर्दन काटी जाएगी। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो बड़ी परेशान है, वो कहती है जी कि ये माफिया के मेंबर्स को क्यों छोड़ा गया, अगर इनकी टर्म पूरी भी हो गई थी इनको जेल में रखना चाहिए था क्योंकि अब हमारे लिए चीजें जो है संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं और लोकल म्यूनिसपैलिटी जो है उसके अंदर तो खासतौर पर बड़ा खौफ है लोगों में और वो ये जो सीन्स हैं ये देख रहे हैं और बाकी मीडिया ने भी इसको बहुत ज्यादा दुनिया में हाईलाइट किया है। अच्छा जनाब वीकेंड पे ही जो थाउजेंड्स ऑफ जो लेडीज थी, अभी तक क्योंकि ये प्रोटेस्ट चल रहा है पेरिस के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ लेडीज जो थी वो फ्रांस के अंदर सड़कों के ऊपर थी अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस। फ्रांस के अंदर जो पेरिस में सिर्फ औरतें ही नहीं उनके साथ मर्द जो थे वो भी मार्च कर रहे थे और उन्होंने पर्पल कलर के प्लैक कार्ड्स उठाए हुए थे और जिसमें कि ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको वो डिनाउंस कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि औरत का जो रिप्रोडक्टिव राइट है वो उसके अपने खुद के पास ही होना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है कि ये राइट्स शायद रोल बैक किए जाएंगे यूएस के अंदर, तो उनको डर है कि शायद फ्रांस में भी ऐसा ना किया जाए। यहां का जो वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज पेपर है लेमोंड उसके अंदर आया कि तकरीबन 80,000 प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अभी भी पेरिस के स्ट्रीट्स में हैं और तकरीबन 400 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काफी जनाब तूफान आया हुआ है वहां पे भी जो है फ्रांस में भी। यूएस जो है उसने आज कहा है कि लेबनान के साथ शायद इसराइल का सीज फायर जो है वो हो जाएगा और ये जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स नाउ। ये जो इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि कल ट्यूसडे को हम एक मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं जिसमें कि लेबनान के साथ सीज फायर की हम बात करेंगे। लेबनीज डेप्यूटी पार्लियामेंट्री स्पीकर एली एस बूसाफ जो हैं उन्होंने भी कहा है जी कि हम तो बिल्कुल मानने को यूएस प्रपोज ट्रूस जो है उसको तैयार है, उसके अंदर हमारी तरफ से कोई मेजर जो है वो ऑब्स्टेकल्स नहीं है। यूएस प्रपोज जो ट्रूस है उसके अंदर इजरायली मिलिट्री को कहा गया है कि सदर्न लेबनान से आप विदड्रॉ करें और लेबनीज फोर्सेज जो है 60 डेज के अंदर वहां पे डिप्लॉयमेंट करें। इजरायली एम्बेसडर टू यूएन उसने कहा है कि जी ये जो सीज फायर टॉक्स हैं ये बिल्कुल चल रही हैं हिजबुल्ला के साथ और जो है वो हम इसको आगे लेके जाएंगे। ये उस वक्त उन्होंने कहा जिस वक्त इसराइल ने सदर्न लेबनान के ऊपर एक अटैक किया, उसके रिटेलिएशन में जो है जो ये इसराइल ने अटैक किया था उस पर हिजबुल्ला ने अटैक किया, क्योंकि जो ये नया अटैक हुआ था इसमें इसराइल ने 29 लोगों को बैरूत में मारा, तो हिजबुल्ला ने जी फिर कोई 300 से ज्यादा रॉकेट्स मारे इसके ऊपर तेल अवीव के ऊपर जिसमें के काफी उनके होम्स वहां पे डैमेज हुए हैं और काफी वो जो पीटा तिकवा का एरिया है वहां पे काफी सिविलियंस जो हैं इजरायली उनकी भी इंजरीज की मिली हैं और साथ साथ 6 लोगों की डेथ्स हुई हैं। इसराइल ने जो अटैक किया था ये बड़ा सीवियर था, इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जो डेथ हुई थी, तो एज अ रिजल्ट टोटल जो अब डेथ टोल है वो 3000 से ऊपर चली गई है। इसके साथ साथ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनाई उन्होंने भी कहा है कि ये जो इजरायली लीडर्स को डेथ सेंटेंस सुनानी चाहिए, इनके लिए अरेस्ट वारंट नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ ईरान जो है ईरान ने अब कहा है कि हम जो फ्रांस जर्मनी और यूके के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ न्यूक्लियर टॉक्स फिर से करने को तैयार हैं और क्योंकि आपको पता ही है कि ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, ये मीटिंग जो है ये फ्राइडे को हो सकती है। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बगेरी उन्होंने ये सारे डिटेल्स दिए हैं, इसकी कॉन्फर्मेशन यूके के ऑफिशियल्स ने भी की है। वो कहते हैं जी कि रीजनल इंटरनेशनल इशूज पैलेस्टाइन लेबनान न्यूक्लियर इशूज जो है हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। रिसेंटली नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो थी उसने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ईरान को डिनाउंस करने की जरूरत है कि वो बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं कर रहा, हमको नहीं बता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ये तीनों नेशंस जो हैं अब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ मिलेंगे और जो है वो अब इस पर बात करेंगे। आज जो आईएईए की जो वोटिंग हुई थी उसमें से 19 ऑफ 35 मेंबर्स जो है उन्होंने कहा था कि सेंसर करें ईरान को, 12 ने अब्सटेन किया था और रशिया और चाइना जो थे उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ईरान के साथ कोई सख्ती करने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक एक औरत एवरी 10 मिनट्स अपने ही घर में मारी जाती है, उसको मारता है या तो उसका पार्टनर या तो उसका अपना ही कोई रिलेटिव। और ये जो रिपोर्ट है ये उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा किया है फॉर 2023 और 107 कंट्रीज का उन्होंने किया है और आज जो है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है तो उसके साथ ये कोइंसाइड इनकी रिपोर्ट करती है। इसके अलावा वो कहते हैं जी फेमिसाइड्स जो है वो भी अलार्मिंगली हाई लेवल पे है। उन्होंने कहा जी 85,000 women and girls were murdered last year by their relatives or their partners in the house. According to United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Women's Agency, 60% or 51,000 women jo hai unko apne partner ya relative ne mara tha, 140 किल्ड पर डे उसमें उन्होंने डिटेल्स दी हैं। उसमें उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा इसलिए, वैसे तो आप कहते हैं कि घर जो है वो सबसे महफूज जगह है लेकिन घर ही औरतों के लिए सबसे डेंजरस जगह बन गई है। अफ्रीका जो है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट टोल है 21,700 और जो लोएस्ट फेमिसाइड रेट है वो यूरोप के अंदर है जिसमें कि 2,300 औरतों के मर्डर हुए हैं और फिर एशिया, लेकिन अफ्रीका में ये काफी हाई है रेट। तो ये जी खबर आज जो है इनकी रिपोर्ट आई है। अच्छा जनाब, क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया सारी में बड़ी तबाही आई हुई है और बेतहाशा रेन्स आ रही हैं, उन रेन्स की वजह से फ्लडिंग हो रही है। इन रेन्स और फ्लडिंग्स की वजह से 16 लोगों की डेथ्स हुई है सुमात्रा इंडोनेशिया के अंदर जब वहां पे लैंड स्लाइड्स हुए हैं और आर्मी और रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो काफी इफेक्टेड एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, खासतौर पर 4 इफेक्टेड एरियाज इंडोनेशिया में। बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं, मड जो है उसके अंदर भी फंसे हुए हैं, रॉक्स जो हैं वो टूटी हुई हैं, जो ट्रीज हैं वो भी जो है गिर गिर के जो है वो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं। आप सोचें जरा कि बड़े बड़े दरख्त जो है रोल होकर पहाड़ों से नीचे आके गिर रहे हैं क्योंकि बेतहाशा रेन्स जो है वो यहां पे हो रही है। इसके अलावा जो रिवर बैंक्स हैं वो भी भर भर के बाहर निकल रहे हैं रिवर्स में से, जिसकी के वजह से बहुत सारे जो कच्चे घर हैं वो टूट गए हैं, सारे फार्म्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इसके साथ साथ बेतहाशा हैवी रेन की वजह से जो है 2.3 मिलियन डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस इन गाजा, उनके भी टेंट्स जो हैं वो भर गए हैं। इसके साथ साथ स्टॉर्म बर्ट जो है वो भी आया हुआ है यूके के अंदर, जिसमें कि बेतहाशा रेन्स और फियर्स विंड्स चल रही हैं। तीन लोगों की अभी तक डेथ्स की खबर आई है इंग्लैंड एंड वेल्स से, और वो कह रहे हैं जी कि ये स्वीप कर रहे हैं सारे एरियाज के अंदर, लैंडस्लाइड्स आई हुई हैं, दरख्त गिरे हुए हैं यूके में, और रोड एक्सीडेंट्स बेतहाशा हो रहे हैं, पावर आउटेज आया हुआ है, और 120 फ्लड वार्निंग्स अभी भी एक्टिव है यूके के अंदर। और आप सोचें कि यूके मुल्क कितना है, छोटा सा मुल्क है इंग्लैंड, और उसके अंदर 120 फ्लड वार्निंग्स हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ना जी, ये बहुत ज्यादा ही कुछ हैवक इसने क्रिएट किया हुआ है। हेटी के अंदर तो जनाब दो आज खबरें काफी गर्म थी। एक तो ये कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको अब गैंग्स जो हैं वो हायर कर रहे हैं फॉर मनी टू किल, और दूसरा जो है हेशियन ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल के मेंबर्स जो हैं उन्होंने आज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों साहब को, क्योंकि ऑन कैमरा वो बोलते हुए सुने गए हैं कि जिसमें कि उन्होंने कहा है जी के हेशियन लीडर्स आर मोरॉन्स। तो एडगर जो लेब्लॉन फिल्स हैं उन्होंने कहा जी के जो मैक्रों साहब हैं उन्होंने हेटी की पूरी एंटायर नेशन की जो है वो इंसल्ट की है। मैक्रों साहब जो हैं ये इनके रिमार्क्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 मीटिंग जो कि ब्राजील में चल रही थी अर्लियर दिस मंथ, उसमें ये इनके जो है वो सुने जा सकते हैं, जिसमें कि वो कह रहे थे कि ये जो आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर है गैरी कॉनेल, जस्ट 6 मंथ्स के बाद इनको ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, ये बड़ा ही खराब किस्म का जो है वो डिसीजन है। और मैक्रों साहब जो हैं उन्होंने फिर इस तरह की बात की, जिसके ऊपर अब जो हेटी की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि मैक्रों साहब को बिल्कुल हमारे इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी करने से थोड़ा सा हटके रहना चाहिए। और आज हेटी के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने फ्रेंच एम्बेसडर को कॉल की और बेतहाशा प्रेसिडेंट के जो कमेंट्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया कि वो बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट थे और हमारे इंटरनल मामले के अंदर ये एक जो है वो है इंटरफेरेंस है। जर्मनी को तो पता नहीं जी की आग लगी हुई है, ऐसी थानू बताया जी, पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन है जर्मनी के पास। जर्मनी को लग रहा है जी थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाला है। हमने आपको फ्राइडे को भी बताया था कि वो कह रहे हैं जी हम पूरी तरह तैयार हैं, हमारी फोर्सेस तैयार हैं। आज भी जी ये जितने भी जर्मन्स हैं वो कह रहे हैं जी अब हमने पूरी एक लिस्ट ऑफ बंकर्स निकाल ली है कि हमारे ऊपर अगर अटैक हुआ तो हमने किस तरह से बंकर्स जो हैं उनके अंदर अपने सिटीजन्स को जो है हिफाजत में डालना है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि रशिया के साथ बहुत ज्यादा टेंशन्स बढ़ गई हैं। एक पूरी लिस्ट जो है उन्होंने आज बनाई है अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन्स, कार पार्क्स, स्टेट बिल्डिंग्स, प्राइवेट प्रॉपर्टीज की, और वो कहते हैं जी कि ये डिजिटल डायरेक्टरी ऑफ बंकर्स जो है और इमरजेंसी शेल्टर्स जो है ये सारे के सारे लोगों के पास जल्द ही हम उनके फोन एप्स के ऊपर डाल देंगे ताकि वो प्लान कर सकें अगर कोई हमला हो जाता है जर्मनी के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा हम बहुत सारे प्रोटेक्टिव शेल्टर्स जो हैं वो भी बना रहे हैं, और लोगों को भी उन्होंने कहा है कि आप अपने जो गैराज और अपने बेसमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट करें एज प्रोटेक्टिव शेल्टर्स। जो है जर्मनी में 84 मिलियन पीपल हैं और वहां यहां पे 579 बंकर्स हैं, मोस्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से या कोल्ड वॉर के ईरा से हैं। और वो कहते हैं जी कि ये जो शेल्टर है इनके अंदर 480,000 पीपल जो है वो आ सकते हैं। और वो कहते हैं जी कि अब हम जो है एक जो है मीटिंग कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी कॉन्फ्रेंस तो हमारी जून से ही जो है वो चल रही थी इन चीजों के ऊपर, और स्पेशल ग्रुप अब जो है इस सारी चीज के ऊपर लग रहा है। और ये मतलब है अगर जर्मनी अब ये बैक टू बैक ये बोल रहा है, इसके मतलब है कोई तो इंटेलिजेंस उनके पास है, हो सकता है कि जो रशिया की वॉर है वो ज्यादा एस्केलेट कर जाए, क्योंकि जर्मनी जैसा कंट्री बार बार ये कह रहा है जी वी आर वॉर रेडी, आई मीन व्हाट डज दैट मीन। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चोपड़ा ज्वेलर्स। वो कहते हैं जी इंतहाई एलिगेंट, यूनिक और स्टाइलिश हमारे पास ज्वेलरी है, तो दे आर इन इटोबी को, और अगर आपका कोई भी फैमिली का ओकेजन है और आपको इनसे ज्वेलरी चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 416-744-7534। और जी ओपन माइक कफे, मजे के खाने खाना चाहते हैं आप तो नासिर शाह साहब के पास जाओ, और वहां पे ये 1310 डेनलेस स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा में है, तो आप अपना ऑर्डर पहले भी डाल सकते हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं 416-526-6800 पे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने पीटीआई को कहा है कि भई तुम या तो अपना परेड ग्राउंड जो पिशावर मोड़ है उसके पास तुम अपना सिट इन कर लो, या कि फिर वो कहते हैं जी कि संगजियानी जो है, नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कहते हैं संगजियानी जो है उधर आप कर लो। अगर आपने रेड लाइन क्रॉस किया, यानी कि अगर आपने इस्लामाबाद में एंटर होने की कोशिश किया, तो फिर इस्लामाबाद में कर्फ्यू भी लगेगा और आर्मी को भी बुलाया जाएगा। इससे पहले कोई खबरें आ रही थी कि जैसे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है उनकी पीटीआई के लीडर्स के साथ कोई मुलाकातें हैं, पीटीआई के जो चेयरमैन है गौर अली खान और एडवाइजर टू केपी चीफ मिनिस्टर ऑन इन्फॉर्मेशन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनके साथ इनकी कोई बातचीत हुई थी मिनिस्टर एनक्लेव में। हालांकि इससे कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ ऐसे बोला था कि शायद नहीं भी हुई हैं इस तरह की मुलाकातें। बहरहाल जी, मिली जुली कोई खबरें आ रही हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने पीटीआई को कहा है कि बिल्कुल इस्लामाबाद की तरफ मत आएं, क्योंकि यहां पर बेलारूस का जो एक इन्वेस्टर्स का ग्रुप है वो आया हुआ है, और यहां पे जो पीटीआई के कॉन्वॉय जो हैं उनको आपको पता ही है कि लीड कर रहे हैं केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, तो उनको भी कहा गया है कि बिल्कुल आप ये जो इस्लामाबाद के लिमिट्स में एंटर मत होएं। बहरहाल जो लोग वहां पे बेतहाशा पहुंचे हुए हैं सारे पाकिस्तान से पीटीआई के फ्लैग्स लेके, इस्लामाबाद के अंदर बेतहाशा पुलिस जो है वो नजर आ रही है, रोड्स को सारे कंटेनर से ब्लॉक किया गया है, थाउजेंड्स ऑफ इमरान खान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको प्रोटेस्ट से पहले ही पुलिस ने डिटेन कर लिया है। फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स अमीर मुकाम जो है उन्होंने कहा है कि पीटीआई इस पूरे इकोनॉमिक लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पीएमएलएन का एजेंडा डेवलपमेंट है, पीटीआई का डिस्ट्रक्शन है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारर ने भी कहा है कि ये जो है लोगों ने इनकी जो पॉलिटिक्स ऑफ एनआरकी है उसको रिजेक्ट कर दिया है। भाई जान तुम ख्वाब तो बाहर आ जाओ अताउल्ला तारर साहब। पंजाब की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी साहबा जो हैं वो कहते हैं जी कि ये May 9 Part 2 है जो ये कर रहे हैं, और इस क्लैश के अंदर जो एक पुलिस कांस्टेबल मुबशर की डेथ हुई है वो पीटीआई की वजह से हुई है, क्योंकि इन्होंने उसके साथ क्लैश किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी जो हैं वो वायलेंस इंसाइट कर रही हैं। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी केपी के गवर्नमेंट को कहा है कि जी आप सारे रिसोर्सेज जो है अपने पीटीआई के लिए यूज कर रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कहने लगे कि ये सारा पैसा पब्लिक का है, पब्लिक पे करना चाहिए। आज सारे पंजाब के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो बंद थे, इंक्लूडिंग रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कांस्टेबल मुबशर की डेथ हुई है उसको बड़ा कंडेम किया और कंडोलेंसेज उसकी फैमिली को ऑफर किए। इसके अलावा उन्होंने अथॉरिटीज को कहा जी कि आइडेंटिफाई करें कि किसने इसको मारा है। सीसीटीवी की कैमरा की जो सारी फुटेज है वो अब निकाल ली गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है उसने कहा जी कि हमने सिटी बंद किया था लेकिन अब ट्रैफिक फ्लो जो है उसको रिस्टोर किया गया है मेजर रोड्स पे। इसके अलावा पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि जी उसने टीयर गैस फेंकी इनके ऊपर, पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर नियर पत्थरगढ़। तो अब दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, वही हम कह रहे हैं भाई दोनों मिलकर बैठ जाओ बात कर लो ताकि ये क्या उस मुल्क में खत्म हो। लेकिन जी नहीं। अच्छा जनाब, अब जब ये आपको जैसे हम बता ही रहे थे कि इमरान खान और पीटीआई को दीवार से लगाने के चक्कर में है, पारा चिनार के अंदर बेतहाशा जुल्म हुआ। 32 के करीब लोग जिसमें के 14 सुन्नी थे और 18 शिया थे, इनके बीच में जो है लड़ाई झगड़े में लोगों की डेथ हुई, 47 क्रिटिकली इंजर हुए। वैसे तो लोग कह रहे हैं जी कि ये एक जमीन का झगड़ा था लेकिन असल में ये सुन्नी और शिया का ये सेक्टेरियन वायलेंस थी यहां पे कुरम में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी के अंदर। यहां पे एक जो एनवॉय था वो गुजर रहा था और कुछ दिन पहले भी तो जिसके के ऊपर अटैक करके डजन्स ऑफ लोगों को मारा गया था। मीडिया जो है वो कहता है जी कि आर्म्ड मैन इन बगन एंड बच्चा कोट जो है उसने फिर उसके बाद शॉप्स को, घरों को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगाई। बेतहाशा गन फायर जो है अली जई और बगन कबीलों के बीच में रहा। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लोज रहे, कर्फ्यू यहां पे लगाया गया है, मोबाइल सर्विसेज जो है सस्पेंडेड हैं। लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई गवर्नमेंट और अथॉरिटीज बिल्कुल हमको सिक्योरिटी देने में नाकाम है। जी बिल्कुल ठीक है, हम आपको एंडोर्स करते हैं, सही कह रहे हो आप। प्रोटेस्ट जो है ये इनका खतरा है कि ये फैल सकते हैं। सुन्नी शिया क्लैशेज जो है अभी तक उसके अंदर रिसेंट मंथ्स में कोई 150 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है, और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जो कुछ गनमैन थे उन्होंने ओपन किया फायर शिया जो दो कॉन्वॉयज चल रहे थे उसके ऊपर, जिसमें कि 40 लोगों की डेथ हुई, 11 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। फिर उसके जवाब में शिया जो हैं उन्होंने भी फिर सुन्नी लोकेशंस जो हैं इंक्लूडिंग बगन बाजार उसके ऊपर जो हैं वो अटैक्स किए और फिर इन लोगों की डेथ्स हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कोई आपको मेन स्ट्रीम अखबार, न्यूज चैनल, कोई ये पारा चिनार जो है उसको कवर नहीं कर रहा, कोई नहीं बता रहा कि इधर क्या हुआ है। तो जो है वहां पे सर्क तक काटे गए हैं लोगों के, और बस जो है जुल्म का बाजार गरम है। अच्छा जनाब, इसके बीच में ये जब मारामारी चल रही है तो बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो अब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं 3 डे ऑफिशियल विजिट के ऊपर, और इनके साथ जनाब जो थे इससे पहले, इनके आने से पहले कोई 68 मेंबर बिजनेस डेलीगेशन जो था वो इस्लामाबाद में पहुंचा था, और वो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने उनको जो है वो उस पे एयरपोर्ट पे ही उनको उनका वेलकम किया लुकाशेंको का। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों के बीच में बहुत सारे एमओयू साइन किए जाएंगे, क्योंकि ये जो हाई लेवल डेलीगेशन है इसके अंदर बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ एनर्जी, जस्टिस, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, इमरजेंसी सिचुएशन है, इसके अलावा चेयरमैन ऑफ मिलिटरी इंडस्ट्री कमेटी भी आए हैं। 43 मेन बिजनेस पर्सनैलिटीज जो हैं बेलारूस की वो भी आई हुई हैं। बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर रोमन गोलोवशेंको जो हैं वो भी अर्लियर दिस ईयर इस्लामाबाद में आए थे फॉर एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, और अपने काउंटर पार्ट से मिले थे। तो अब ये जो है प्रेसिडेंट साहब का यहां पे आना, तो इसको एक स्टेप आ गया। अब ये इसको पता नहीं कैसे देखेगा वेस्ट, क्योंकि लुकाशेंको साहब जो है उनको ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड पसंद नहीं करता है, वो इनको जो है अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन बहरहाल अब वो आए हैं पाकिस्तान में तो पता नहीं है क्या आएगा। अच्छा जनाब, ये जो मस्जिदें ढाने का सिलसिला है ना जी हिंदुस्तान में, ये तो किसी सूरत रुकता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वही जो इनके बहुत बड़े माशाल्लाह चीफ जस्टिस, जिन्होंने वैसे मैं उनकी तारीफ करती थी, जो चंद्राचूड़ साहब थे, बड़े काबिल थे, बड़े अच्छे कुछ फैसले भी किए, लेकिन जो बाबरी मॉस्क का एक गलत उन्होंने फैसला दिया ना, उसके बाद आप देखें ज्ञान वापी मस्जिद को गिराया गया, और कितनी छोटी मस्जिदों को बुलाया गया वीकेंड के ऊपर, ये एक और मुगल ईरा की ये जो मस्जिद थी यूपी के अंदर संभल में, इसके ऊपर जो है अब लड़ाई झगड़ा उधर वो शुरू हो गया है। यहां पे 3 मुसलमान लोगों को मार दिया गया है, ये तो ऑफिशियल वो है, लेकिन लोगों का कहना है जी बहुत सारे मुसलमान जो है उनको इस इलाके के अंदर मारा गया है, और जो है वो कहते हैं जी कि लोकल मुस्लिम जो हैं उन्होंने अटैक किया पुलिस के ऊपर, और जो लोग सर्वे के लिए आ रहे थे। हुआ यह था कि ये जो मस्जिद थी इसके बारे में कुछ हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा था जी कि ये बाबर के जमाने में 1529 में बाबर ने एक यहां पे हरी हरी टेम्पल था उसको ढा के उसके ऊपर मस्जिद बनाई, यानी कि 1529 में हिंदुस्तान में और तो कोई जमीन खाली थी नहीं कि बाबर को ये ख्याल आया कि जी ये इसका टेम्पल गिरा के हमने मस्जिद बनानी है। वाह वाह क्या बात है भाई क्या बात है। हाँ हाँ, तो वो कहते हैं जी कि बाबर जो है उसने ये इधर ये टेम्पल गिरा के तो इस पे बनाया है, तो इसका सर्वे होना चाहिए। तो कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया था कि जी बिल्कुल जाके इस मस्जिद के अंदर सर्वे करें। पहले एक सर्वे हुआ, फिर दूसरा हुआ, तो लोग वहां पे भड़क गए, उन्होंने कहा भाई ये क्या बार बार आके सर्वे कर रहे हो, ये तो सदियों से यहां पर ये मस्जिद ही है और मस्जिद ही थी। बहरहाल जी जब पुलिस के और मॉब के बीच में लड़ाई हुई तो पुलिस जो है उसने, पुलिस कहती है कि इन लोगों ने रबर बुलेट्स मारे, वो कहते हैं कि जी पुलिस ने रबर बुलेट्स मारे, फिर पुलिस ने जो है यहां पे टीयर गैस मारी और प्लास्टिक बुलेट्स मारे इनको प्रोटेस्टर्स को यहां से हटाने के लिए। उसमें वो कहते हैं जी कि 20 पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो भी बड़े इंजर हुए, ना सिर्फ इनकी बुलेट्स की वजह से जो रबर बुलेट्स उन्होंने मारे, बल्कि उन्होंने जो पत्थर उठा उठा के मारे उनकी वजह से भी। वो फिर वो कहते हैं जी पुलिस वाले के इन मुसलमानों ने जो है वो वहां पे जो मोटरसाइकिलें थी गाड़ियां थी उनको आग लगाई। वो कहते हैं जी कि यहां पे जो हिंदू आए हुए थे, मुसलमान कहते हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ यहां पे किया है, और ये जो है यहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि हिंदू कहते हैं कि ये प्रोमिनेंट हिंदू टेम्पल जो था दिस वॉज डेडिकेटेड टू विष्णु एंड काल्की, और हम बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाईजान 1529 से लेके अभी तक आप सो रहे थे, उसी वक्त गिरा देना था ना फिर इसको, तो अब आज कर रहे हैं। पार्लियामेंट का जो सेशन है जी हिंदुस्तान के अंदर वो बिल्कुल इट केम टू अ कंप्लीट हॉल्ट इन बोथ द हाउसेस, क्योंकि यहां पे जो बातचीत थी वो ऑपोजिशन के जो एमपीज थे उन्होंने फिर से मुद्दा उठाया अडानी ग्रुप की करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज, जिसका जिक्र अभी रिसेंटली जो है वो यूएस ने किया, 13 नोटिसेज लाए गए। इसके अलावा जो है ये जो वायलेंस संबल में भी हुई है वो भी, और मणिपुर में जो कॉन्स्टेंटली चली रही है, और लैंडस्लाइड्स जो आए हुए हैं व्यान के अंदर, तो वो कह रहे हैं जी कि गवर्नमेंट का किसी तरफ ध्यान नहीं है। जो स्पीकर थे डांडेकर साहब उन्होंने इसको बिल्कुल नकारा, और उन्होंने कहा जी कि मेरे पास कोई इस तरह के नोटिसेस को जो है वो उनके ऊपर प्रोसीडिंग चलाने का कोई भी हुक्म नहीं था। पहले तो पार्लियामेंट को 15 मिनट के लिए बंद किया गया, लेकिन फिर चूंकि हंगामा इतना हुआ तो फिर उसको जो है बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, और अब कल जो है फिर से ये शुरू होएगा। इस पे ज्यादातर लोगों ने बात की अपोजिशन ने कि ये जो सोलर सेक्टर है इसके ऊपर जो इनके हैं करप्शन के केसेस इनके ऊपर अलेजली उसके ऊपर बात करें। जाहिर है कि जो अदानी ग्रुप है उसने बिल्कुल डिनाई किया इन एलिगेशन को, उन्होंने कहा ये बेसलेस है और हम इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग चलाएंगे। लेकिन उसकी वजह से हिंदुस्तान में जो है चीजें बड़ी गंभीर हो गई हैं और लोगों को जो ये सोलर सेक्टर में जो सोच रहे थे हमें बिजली मिलेगी वो अब जो है वो क्या करेंगे। इसके साथ साथ यूएस ने आज कहा है कि हम री एग्जामिन कर रहे हैं ये जो हमारा डिसीजन था टू लैंड ओवर 550 मिलियन US डॉलर फॉर श्रीलंकन पोर्ट प्रोजेक्ट जो कि अदानी ग्रुप जो है जिसको बैक कर रहा था। तो वो कहते हैं जी हम अब देखेंगे इसको कि हमको इतने पैसे इनको देने हैं। इसी के साथ साथ एक और धचका जो अदानी ग्रुप को लगा है वो फ्रेंच एनर्जी मेजर जो है टोटल एनर्जीज उसने भी कहा है कि हम बिल्कुल अपना फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन इनको बिल्कुल नहीं देंगे अदानी ग्रुप को, हम भी पीछे आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने वैसे भी हमसे झूठ बोले, हमको बताया नहीं कि अमरीका में इनके ऊपर एक जो है वो इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही थी। तो पाइजन जरा चीजें थोड़े गंभीर हो गए हैं, ठीक है जी। और अदानी ग्रुप और अज्योर पावर जो है वो जरा थोड़ा अंडर द स्कैनर आ गए। अच्छा जनाब जैन मलिक साहब, जैन मलिक साहब ने अपना जो इनका टूर है वो उसका उन्होंने फर्स्ट कॉन्सर्ट जो है वो किया है। लेकिन ये इन्होंने फर्स्ट कॉन्सर्ट जो है वो डेडिकेट किया है अपने फेलो वन डायरेक्शन मेंबर लियाम पेन के साथ, जिसका आपको पता ही है कि अक्टूबर में जिनकी डेथ हुई थी, जब ये क्या कहा जा रहा है कि एलिजली या तो इनको किसी ने गिराया है या तो ये इन्होंने बहुत ज्यादा ओवरडोज किए हुए थे। तो थर्ड फ्लोर ऑफ होटल इन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से ये गिरे और इनकी डेथ हुई है। मलिक ने जब अपना एंड किया कॉन्सर्ट तो वो बड़े इमोशनल से हो गए, ये लीड्स के अंदर हो रहा था। उसके अंदर इन्होंने कहा लियाम पेन 1993 to 2024 लव यू ब्रो, और ये सारा कुछ जो है बड़ी बड़ी जो स्क्रीन्स लगी हुई थी उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। फैंस ने कहा कि जी इसका जो ट्रिब्यूट है उसमें हमको बहुत ज्यादा रोना आया, ये जो अपना प्ले कर रहे थे सॉन्ग स्टैंडर्स, और उसके बाद इन्होंने ये जो बातें की, इन्होंने जो थे इसके पेन के डेथ के बाद अपना टूर सारा कैंसिल कर दिया था और अब फिर जो है आके इन्होंने टूर शुरू किया तो उसका पहला कॉन्सर्ट था। हमने आपको वीकेंड में बताया था कि जी आराध्या की बर्थडे थी और वो सिर्फ खल्ली उसने ऐश्वर्या रॉय ने मनाई थी और अभिषेक उसमें नहीं थे। तो आज अभिषेक बच्चन ने अमिड ऑल द डिवोर्स र्यूमर्स उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा थैंकफुल हूं अपनी वाइफ ऐश्वर्या रॉय की क्योंकि वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल है और वो बड़ी सेक्रीफाइसिंग मदर है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा उसका ग्रेटफुल हूं कि जब मैं फिल्म कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल ये चैन और सुकून होता है कि मेरी बेटी के पास घर में ऐश्वर्या है। और वो कहते हैं जी कि बच्चे इस तरह से नहीं सोचते हैं कि हम कोई अब थर्ड पीपल बन गए हैं, वो हमें पेरेंट और फादर या मदर ही समझते हैं। वो कहते हैं हमारा अपना चाइल्डहुड ऐसे ही गुजरा है और हम जो है वो हमारे वालिद साहब अमिताभ बच्चन जो थे वो बड़े बिजी होते थे अपने करियर में, एट द पीक ऑफ हिज करियर थे 1970s में। तो हमारी मां जया जो थी उसने बैक स्टेज ले लिया था और खासतौर पे मेरी बर्थ के बाद इन 1976 और बच्चों का घर पे वो ख्याल करती थी। तो आई एम थैंकफुल कि अब इस वक्त मेरी बेटी का ख्याल ऐश्वर्या कर रही है। पैन फिर तुम क्यों इस तरह उड़ाते रहते हो मासूमा के खिलाफ डिवोर्स दी खबर हैं। अच्छा जनाब जावेद अख्तर साहब बड़े भड़के हुए नजर आए क्योंकि उन्होंने ये जो जावेद संदीप रेड्डी वंगा की जो अभी फिल्म आई थी 2023 में एनिमल, उसके बारे में उन्होंने कुछ बयान दिए थे तो लोगों ने कहा कि भाई इसको एक्सप्लेन करो। तो आज उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी एक इंटरव्यू के अंदर, उसने कहा अगर 10 12 15 लोग जो हैं इस तरह के जिनके के गलत वैल्यूज हैं वो एक गलत फिल्म बनाते हैं या एक वल्गर और घटिया किस्म का ओब्सीन किस्म का गाना बनाते हैं तो वो सिर्फ 10 12 15 लोग होते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि जिस वक्त 140 करोड़ लोग जो हैं इसको देखते हैं तो ये अगर 15 लोगों को मैं परवर्ट कहता हूं और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जब 140 करोड़ लोग इस जैसी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं और फिल्म जो है 500 करोड़ तक का बिजनेस करती है तो उस पर मुझे अफसोस होता है। और मैं सोचता हूं कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो इस तरह की डेंजरस और घटिया चीजों को कंज्यूम कर रही है तो हमारी सोसाइटी किस तरफ चल रही है। हैं जी आमिर साहब कितने चल रही है सोसाइटी, ठीक है जी। फॉर्मर वेस्ट इंडियन कैप्टन कार्लोस ब्राथवेट जो हैं वो अब लाहौर कलंदर के स्किपर होंगे फॉर अपकमिंग इनऑगरल सेशन ऑफ ग्लोबल सुपर लीग जो कि स्टार्ट हो रही है कल से नवंबर 26 से, एंड ही हैज बीन पार्ट ऑफ कलंदर स्क्वाड और उनका बड़ा जो है प्यार मोहब्बत है इनके साथ। तो वैसे भी जो ये मैचेस हैं ये गुआना में होते हैं और वो कहते हैं जी कि आई एम फेमिलियर विद द प्लेइंग कंडीशंस, जो कलंदर हैं उनका जो है ओपनिंग मैच यानी कि जो कर्टन रेजर है वो होम साइड गुआना एमेजॉन वॉरियर्स के साथ होगा कल से, और पांच टीमें जो हैं इस T20 में हिस्सा ले रही हैं। इसके अंदर हैं हैम्पशायर हॉक्स फ्रॉम इंग्लैंड T20 ब्लास्ट, रंगपुर राइडर्स फ्रॉम बांग्लादेश प्रीमियर लीग, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियन स्टेट टीम जो है वो है। हर टीम जो है बस एक एक ही मैच खेलेगी इन राउंड रॉबिन फॉर्मेट, और 11 मैचेस जो हैं वो फिर उसका जो फाइनल है दिसंबर 7 को होएगा। तो 11 मैचेस है जी इसके अंदर। और जनाब हूं देखो जी कैसे दिन आ गए,
ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए हैं जी। जिम्बाब्वे ने बीट किया जी पाकिस्तान को, वाह क्या बात है। एक तरफ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है, दूसरी तरफ जिम्बाब्वे से हार रहा है जी। तो जिम्बाब्वे बीट पाकिस्तान बाय एक भी नहीं, दो भी नहीं, 80 रन से एज पर द डकवर्थ लुईस डीएलएस जो सिस्टम होता है उसमें, क्योंकि रेन आ गई थी फर्स्ट ओडीआई में। ये थ्री मैच सीरीज थी यहां पे, ये क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में हो रही थी, रेन जो था उसने फिर इंटरप्ट किया था इस गेम को, और पाकिस्तान जो थे वो 64-6 थे, और हालांकि इनको सिर्फ 206 रन चेज करने थे, जो कि अगर पूरा मैचें होती तो कर लेते, लेकिन बहरहाल जी ऐसा ना हुआ, ये ना हो सका, और अब ये हालत है कि तुम नहीं हम भी नहीं है जी, तो ऐसा हुआ है कुछ। अच्छा जी, हैदर अली साहब जो हैं अलबत्ता उन्होंने बनाए 100 रन, और उन्होंने पाकिस्तान शाहींस को 108 रन विक्ट्री दिलाई ओवर श्रीलंका ए इन द फर्स्ट ओडीआई एट इस्लामाबाद क्लब। जो है पुट टू बैट फर्स्ट होम साइड ने बनाए 305 रन फॉर 7, और ये बहुत बड़ा टारगेट था। इसमें श्रीलंका की तरफ से मलिंगा ने 3 विकेट्स ली फॉर 61, श्रीलंका जो था वो 61 फॉर 4 था, फिर उसके बाद 136 फॉर 7 था, उसके बाद जो इसको पूरे को बॉल आउट किया गया। विक्रमा सिंघे ने 47 रन बनाए, सोनल दिनुषा ने 38, और सहान अराची ये जो है उन्होंने 35 बनाया। पाकिस्तान के शेरॉन सिराज ने 3 विकेट्स ली फॉर 21। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज पीसीबी जो है उसने अपनी अनवेल की है प्लेइंग 11 फॉर द सेकेंड ओडीआई ऑफ 3 मैच सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे। मिडिल ऑर्डर बैटर जो है तैयब ताहिर, और राइट आर्म लेग स्पिनर जो है अब्रार अहमद, उनको वो जो ये दोनों जो हैं ये अपना ओडीआई डेब्यू कर रहे हैं, और ये रिप्लेस करेंगे हसीबुल्ला खान और मोहम्मद हसनैन को, जो कि जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो खेला था डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तैयब जो है उसने बहुत अच्छा खेला था और अपना जो है वो प्रूव किया था अपने स्किल्स। इसी तरह अब्रार जो था उसको भी मेडन कॉल मिली है, ताकि पाकिस्तानी बॉलिंग के जो अटैक जो है उसके अंदर डेप्थ क्रिएट की जा सके। जिम्बाब्वे जो है 3 मैच सीरीज को 1-0 से लीड कर रहा है। सेकेंड ओडीआई जो है कल खेला जाएगा बुलेवो में। ठीक है जी, तो ये सन साड़ियां कहानियां,
तो ये थी हमारी आज की
सारी कहानियां।
सारी कहानी मतलब सारी, कोई अधूरी कहानी नहीं,
नहीं
तेरी मेरी अधूरी कहानी वाला नहीं।
नहीं नहीं नहीं, कितनी खतरनाक स्टोरियां, गैंग वॉर्स हैं, फ्लड हैं, तूफान है,
थर्ड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट करा,
और जो
थर्ड बिस्तर लपेटो भागों में तो जंग शुरू होने वाली।
क्योंकि फ्राइडे को भी हमने सुनाया था ना, जर्मनी कह रहा है कि मेरी फोर्सेज रेडी है, बंकर रेडी है।
वो बेसिकली अभी तक वो उस वाले टाइम में रह रहे हैं,
नहीं वो कह रहा है रशिया कभी भी हमला कर सकते हैं, हम
हमला करते हैं।
हाँ
तो रशिया ने ही बड़ा रोला पाया,
रशिया भी बड़े रोले वाले प्लॉट के बीच।
वो प्लॉट ही गलत है, बड़ा प्लॉट है।
हालांकि तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान ये सारे अलग हो गए, फिर भी रोले वाला प्लॉट है।
रो देंगे उनको, और बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने का। इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहे।
अच्छा जी,
तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का, बहुत शुक्रिया नाजरीन का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, आप मुजफ्फर साहिबा की तरफ से। नहीं वो फिर मेरी भी जो है वो शिकायतें आ जाएंगी,
मैनेजमेंट
का खेल सही कर लें और ये सही कर लें, तो मेरी तरफ से मैनेजमेंट ठीक हो गया। आप मुजफ्फर साहिबा की तरफ से, माई जमाल साहब की तरफ से, और हमारे इंजीनियर दिशान अहमद की तरफ से इजाजत। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी।
किसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी किसने तुम्हें बनाया।
Yeah.